लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति पृथ्वी तथा प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के पीड़ितों की पुकार सुनकर व्यक्तिगत रूप से उस विश्व की देखभाल का दायित्व ग्रहण करे जिसमें हम सभी निवास करते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पाप फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। रविवार को देवदूत प्रार्थना के पहले पोप फ्रांसिस ने विश्वासों को याद दिलाया कि ईश्वर के साथ हमारा संबंध बाहरी हावभाव से बढ़कर है, और उन्होंने जीवन की पौत्रता, कोमलता एवं प्रेम के आंतरिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रेरित किया। वैटिकन स्थित संत पेट्रस महागिर चघर के प्रांगण में रविवार 1 सितंबर को पोप फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासों को संबोधित कर कहा,
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
Oggi nel Vangelo della liturgia Gesù parla del puro e dell'impuro.
आज धर्म विधि के सुसमाचार पाठ में यीशु शुद्ध और अशुद्ध के बारे बोलते हैं। यह विषय उस समय के लोगों के लिए बहुत प्रिय था जो मुख्यतः रीति रिवाजों और आचरण के नियमों के पालन से जुड़ा था। किसी भी ऐसी चीज या व्यक्ति के संपर्क से बचना था जिसे गंदा माना जाता था, और अगर ऐसा हो भी जाता तो उस दाग को मिटाना था। संत पापा ने कहा,
Alcuni scribi e farisei, ossessionati, stretti osservati di tal nome accusano Gesù.
कुछ शास्त्री और फरीसी जो ऐसे नियमों का सख्ती से पालन करते थे यीशु पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने अपने शिष्यों को बिना हाथ धोए अर्थात अशुद्ध हाथ से भोजन करने की अनुमति थी, और यीशु फरीसियों के इस भर्त्सना को अपने शिष्यों तक ले जाते हैं और उन्हें शुद्धता का अर्थ बतलाते हैं।
La purezza, dice Gesù, non è legata a riti esterni.
यीशु कहते हैं कि इसका संबंध बाह्य रीति रिवाजों से नहीं है, बल्कि सबसे पहले यह आंतरिक स्वभाव से जुड़ा है। इसलिए शुद्ध होने के लिए कई बार हाथ धोने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इससे व्यक्ति के मन में लालच, ईर्ष्या और अहंकार जैसी बुरी भावनाएं नहीं धुलती। यह एक कर्म कांड है जो व्यक्ति को अच्छाई में बढ़ने नहीं देता, बल्कि इसके विपरीत या कभी कभी व्यक्ति को स्वयं में एवं दूसरों में प्रेम के विपरीत विकल्पों और दृष्टिकोणों को अपनाने या यहाँ तक कि उन चीजों को भी उचित ठहराने की ओर ले जाता है जो आत्मा को घायल करते और हृदय को बंद कर देते हैं। संत पापा ने कहा,
E questo, fratelli e sorelle, importante anche a noi.
भाइयों एवं बहनों, और यह हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, हम पौत्र मिस्र से निकलकर और गिरजाघर के प्रांगण में ही हर चीज और हर किसी के बारे में बुरी और निर्दयी गपशप करने के लिए नहीं रुक सकते। यह बकवास जो दिल को बर्बाद कर देता है, आत्मा को भी बर्बाद करता है। संत पापा ने विश्वासों से कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप पौत्र मिस्र में जाएं और फिर प्रवेश द्वार पर ही ऐसी चीजें करें, यह बुरी बात है। प्रार्थना में स्वयं को पौत्र दिखाना, लेकिन फिर घर पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ गुनगुना एवं उदासीनता का व्यवहार करना, या अपने बुजुर्ग माता पिता की उपेक्षा करना जिन्हें सहायता और साथ की आवश्यकता है। संत पापा ने इसे दोहरा जीवन बताया और कहा कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। फरीसों ने यही किया, बाहरी पौत्रता, दूसरों के प्रति अच्छे और दयालु व्यवहार के बिना या सभी के प्रति निष्पक्ष रहे बिना। हो सकता है कि थोड़ी स्वयं सेवा और कुछ परोपकारी कार्य किए हों, लेकिन अंदर ही अंदर दूसरों के प्रति नफरत पालते, गरीबों को तुच्छ समझते या अपने काम में बेईमानी करते थे। पोप ने कहा कि ऐसा करने से ईश्वर के साथ संबंध बाहरी इशारों तक ही सीमित हो जाता है और आंतरिक रूप से हम उनकी कृपा की शुद्धिकरण क्रिया के प्रति अप्रभावित रहते हैं, प्रेम से रहित विचारों, संदेशों और व्यवहारों में लिप्त रहते हैं। संत पापा ने कहा, परंतु हम किसी और चीज के लिए बने हैं, हम जीवन की पौत्रता, कोमलता एवं प्रेम के लिए बने हैं। तो आइए हम अपने आप से पूछें, क्या मैं अपने विश्वास को सुसंगत तरीके से जीता हूँ, अर्थात जो मैं गिरजाघर में करता हूँ क्या मैं उसे उसी भावना के साथ बाहर भी करने की कोशिश करता हूँ, क्या मैं भावनाओं, शब्दों और कर्मों से प्रार्थना में जो कुछ करता हूँ उससे भाइयों के प्रति निकटता और सम्मान के माध्यम से ठोस बनाता हूँ। तब संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करते हुए कहा, कुंवारी मरियम अति निष्कलंक माँ, हमें अपने जीवन को प्रेम की अनुभूति और अभ्यास में ईश्वर को प्रसन्न करने वाले पूजा बनाने में मदद करें। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरित का आशीर्वाद दिया।
Angelus Domini, unciavit Maria.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta Maria,
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने सभी विश्वासियों का अभिवादन किया एवं विभिन्न घटनाओं की याद की। सबसे पहले स्लोवाकिया के धन्य जॉन हॉली की याद करते हुए संत पापा ने कहा,
इन स्लोवाकिया स्टेटो बियटिफिकेटो जॉन हॉली सेमिनारिस्टा डेला कांग्रेस।
कल स्लोवाकिया के सस्टीन में पौली के संत विंसेंट धर्म समाज के सेमिनरी छात्र जॉन हॉली को धन्य घोषित किया गया। इस युवक की हत्या 1965 में तत्कालीन चेकोस्लोवाकिया में कलीसिया के खिलाफ प्रशासन के उत्पीड़न के दौरान हुई थी। संत पापा ने कहा, ख्रिस्त में विश्वास की गवाही देने में उनकी दृढ़ता उन लोगों के लिए एक प्रोत्साहन बने जो आज भी इसी तरह की चुनौतियों से पीड़ित हैं। तब उन्होंने ताली बजाकर नए धन्य को सम्मानित किया। उसके बाद संत पापा ने बुर्किना फासो में आतंकी हमले की याद की और कहा, मुझे यह जानकर दुख हुआ कि शनिवार 24 अगस्त को बुर्किना फासो के बसा लोगो नगर पालिका में एक आतंकवादी हमले में महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। उन्होंने कहा, मानव जीवन के खिलाफ इन निंदनीय हमलों की निंदा करते हुए मैं पूरे देश के प्रति अपना सामीप्य और मौत के शिकार लोगों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। कुंवारी मरियम बुर्किना फासो के प्यारे लोगों को शांति एवं सुरक्षा पाने में मदद करें। संत पापा ने ब्राजील के रेसिप शहर में कोंसेकाओ की माता मरियम के तीर्थ स्थल में हुई दुर्घटना के पीड़ितों के लिए भी प्रार्थना की। पुनर्जीवित प्रभु घायलों और उनके परिवारों को सांत्वना प्रदान करें। उसके बाद संत पापा ने यूक्रेनी लोगों की स्थिति पर गौर करते हुए कहा, और मैं ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमलों से बुरी तरह प्रभावित यूक्रेनी जनता के हमेशा करीब हूँ। मौतों और चोटों के अलावा उन्होंने 10 लाख से अधिक लोगों को बिजली और पानी के बिना छोड़ दिया है। आइए हम याद रखें कि निर्दोष लोगों की आवाज ईश्वर हमेशा सुनते हैं, उनकी पीड़ा के प्रति वे उदासीन नहीं रहते। तब फिलिस्तीन एवं इसराइल में संघर्ष पर खेद प्रकट करते हुए संत पापा ने कहा, एक बार फिर मैं अपने विचारों को फिलिस्तीन एवं इसराइल में संघर्ष की ओर मोड़ता हूँ, जिसके अन्य फिलिस्तीनी शहरों में भी फैलने का खतरा है। मैं बातचीत न रोकने और गोलीबारी तुरंत रोकने, बंधकों को रिहा करने, गजा में जनता की मदद करने की अपील करता हूँ, जहाँ पोलियो सहित कई बीमारियां फैल रही हैं। पौत्र भूमि में शांति हो, यरूशलेम में शांति हो, पौत्र शहर एक मिलन स्थान बने जहाँ ख्रिस्ते, यहूदी और मुस्लिम सम्मान और स्वागत महसूस करें और कोई भी अपने संबंधित पौत्र स्थानों में यथास्थिति पर सवाल न उठाए। 1 सितंबर को सृष्टि की देखभाल के लिए विश्व प्रार्थना दिवस मनाया जाता है। इसकी याद करते हुए संत पापा ने कहा,
Oggi si celebra la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato.
आज हम सृष्टि की देखभाल के लिए विश्व प्रार्थना दिवस मनाते हैं। मैं हर एक संस्थान, संघ, परिवार और व्यक्ति से हमारे आम घर के प्रति एक ठोस प्रतिबद्धता की आशा करता हूँ। घायल पृथ्वी की पुकार लगातार चिंताजनक होती जा रही है और इसके लिए निर्णायक एवं तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। उसके बाद संत पापा ने अपनी आगामी प्रेरित यात्रा की सफलता हेतु प्रार्थना करने का आग्रह करते हुए कहा, कल मैं एशिया एवं ओशिनिया के कुछ देशों की अपनी प्रेरित यात्रा शुरू करूंगा, कृपया इस यात्रा के फल के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात संत पापा ने रोम एवं विश्व के सभी तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों का अभिवादन किया और अंत में अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
A tutti auguro buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। रविवार 1 सितंबर को विदेश में अपनी 45वीं प्रेरित यात्रा के पूर्व संध्या पर संत पापा फ्रांसिस ने रोम वासियों की संरक्षिका माता मरियम सालुस पोपोली रोमानी के आइकन के समक्ष प्रार्थना करने के लिए रोम में सांता मरिया मेजर महागिरजा घर का दौरा किया। संत पापा ने इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्ते और सिंगापुर की अपनी आगामी प्रेरित यात्रा उन्हें सौंपा। महागिरजाघर में प्रार्थना करने के बाद वे वाटिकन अपने निवास स्थान पहुंचे। वाटिकन प्रेस कार्यालय ने घोषणा की कि यह संत पापा की सबसे लंबी यात्रा होगी जो 2 से 13 सितंबर तक चलेगी। और एशिया एवं ओशनिया की प्रेरित यात्रा शुरू करने से पहले संत पापा ने सभी विश्वासियों से फलदायी प्रेरित यात्रा हेतु प्रार्थना करने की अपील की। संत पापा फ्रांसिस अपने परमाध्यक्षीय काल की सबसे लंबी यानी 12 दिनों की प्रेरित यात्रा में इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्ते और सिंगापुर देशों का दौरा करने वाले हैं। आज रोम के समय अनुसार शाम 5:15 बजे वे रोम के अंतर्राष्ट्रीय प्यूमिचिनो हवाई अड्डे से इंडोनेशिया जकार्ता के लिए रवाना होंगे। सोशल मीडिया के एक्स पर उन्होंने अपनी 45वीं प्रेरित यात्रा की सफलता के लिए सभी विश्वासियों से प्रार्थना की अपील करते हुए लिखा, आज मैं एशिया और ओशिनिया के कई देशों की प्रेरित यात्रा शुरू कर रहा हूँ, कृपया प्रार्थना करें कि यह यात्रा फलदायी हो। विदित हो कि संत पापा रविवार या देवदूत प्रार्थना के पश्चात संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में उपस्थित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों से एशिया और ओशिनिया की अपनी 45वीं प्रेरित यात्रा की सफलता के लिए प्रार्थना की अपील की थी। और संत पापा फ्रांसिस की 45वीं प्रेरित यात्रा पर जकार्ता के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल इग्नासियो सुहारियो ने ओसर्वातोरे रोमानो में प्रकाशित एक लेख में इंडोनेशिया के साथ संत पापा की निकटता पर अपने विचार प्रकट किए। संत पापा फ्रांसिस इंडोनेशिया सहित 4 देशों की अपनी प्रेरित यात्रा के दौरान 3 से 6 सितंबर तक जकार्ता में रहेंगे। संत पापा के आने का इंतजार केवल कैथोलिक ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों के भाई बहन भी उत्साह पूर्वक कर रहे हैं। इंडोनेशिया सरकार और इंडोनेशिया के धर्माध्यक्ष सम्मेलन द्वारा संत पापा की यात्रा की घोषणा करने से पहले इस्तिकलाल मस्जिद के ग्रैंड इमाम ने इस वर्ष रमजान के संयुक्त इफ्तार बैठक में जो महागिरजाघर के परिसर में आयोजित की गई थी पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी। इस्तिकलाल मस्जिद के साथ महागिरजाघर का स्थान इंडोनेशिया में सामंजस्यपूर्ण जीवन के आदर्श का प्रतीक है, जिसकी धार्मिक, सांस्कृतिक, जातीय और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अलग अलग हैं। हम वास्तव में संत पापा फ्रांसिस की यात्रा के लिए बहुत आभारी हैं। वाटिकन के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में संत पापा इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति, मित्र देशों के राजदूतों और वर्तमान सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करके अपनी यात्रा शुरू करेंगे। संत पापा इंडोनेशिया के सोसाइटी ऑफ जीसस के सदस्यों से भी मिलेंगे। इसके बाद वे इस्तिक्लाल राष्ट्रीय मस्जिद, जकार्ता महाधर्म प्रांत के गिरजाघर और इंडोनेशिया के धर्माध्यक्ष सम्मेलन के कार्यालय का दौरा करेंगे, जहां संत पापा हमारे कम भाग्यशाली बीमार विकलांग बहनों भाइयों को आशीर्वाद देंगे। यात्रा का मुख्य आकर्षण बुंग कार्नो स्टेडियम में लगभग 70,000 विश्वासियों के साथ पवित्र मिसा समारोह है। जो विश्वासी संत पापा के साथ पवित्र मिसा समारोह में शामिल नहीं हो सकते, वे पल्ली गिरजाघरों में ऑनलाइन मिसा समारोह में शामिल होंगे। समिति ने संत पापा फ्रांसिस की यात्रा के लिए यथासंभव सर्वश्रेष्ठ तैयारी करने का प्रयास किया है, ताकि यह यात्रा यादगार हो और सामान्य रूप से इंडोनेशियाई राष्ट्र और विशेष रूप से इंडोनेशिया में कैथोलिकों के लिए एक आशीर्वाद हो। पिछले कुछ महीनों से इंडोनेशिया के हर पल्ली में पल्लीवासी हर रविवार को एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं कि संत पापा को वाटिकन से बहुत दूर स्थित चार देशों की अपनी प्रेरितिक यात्रा करने के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिले। कार्डिनल इग्नासियस ने आगे लिखा, संत पापा की प्रेरितिक यात्रा पर मैं दो संदेश देना चाहता हूँ। पहला, संत पापा की यात्रा वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही उनके संदेशों का अध्ययन करना और उन्हें गहराई से समझना और उनके उदाहरण का अनुसरण करना। मुझे खुशी है कि इस आमंत्रण का जवाब संत पापा फ्रांसिस के बारे में पुस्तकों के प्रकाशन के साथ दिया गया है। कुछ प्रकाशन विदेशी भाषाओं में लिखी गई पुस्तकों का अनुवाद है, कुछ संत पापा फ्रांसिस की शिक्षाओं के सारांश के रूप में है और विभिन्न लोगों द्वारा संत पापा फ्रांसिस को लिखे गए 500 से अधिक पत्र हैं। इन पत्रों की विशाल मात्रा से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पत्रों के लेखकों के दिलों में जो भी दृढ़ विश्वास है, वह संत पापा फ्रांसिस के दिल में जगह बनाएगा और संत पापा फ्रांसिस उनके लिए प्रार्थना करेंगे। दूसरा, मैं यह भी कहता हूँ कि बहुत से लोग निराश हो सकते हैं, क्योंकि वे संत पापा फ्रांसिस से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल सकते या उन्हें देख भी नहीं सकते। इसलिए जकार्ता के महाधर्म प्रांत के स्टेडियम में जब संत पापा फ्रांसिस यूकारिस्तीय समारोह मनाएंगे, तो जकार्ता महाधर्म प्रांत के सभी गिरजाघर खुले रहेंगे और ऑनलाइन विश्वासियों को इसमें शामिल होने और पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस यात्रा के लिए निर्धारित थीम 3 शब्दों में तैयार की गई है, विश्वास, भाईचारा और करुणा। हमारा मानना है कि ये 3 शब्द इंडोनेशिया में कैथोलिक कलीसिया के विकास की गतिशीलता के लिए एक तरह से रोड मैप हो सकते हैं। कैथोलिक विश्वासी हैं, वे सिर्फ किसी धर्म से संबंधित नहीं है। धर्म का इस्तेमाल आसानी से राजनीति, आर्थिक और अन्य हितों के लिए किया जा सकता है, विश्वास का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध है जिसका फल नई रचना बनना है। उस गतिशीलता में सच्चे विश्वास के संकेतकों में से एक भाईचारे का फल है। इसके अलावा भाईचारे का सच्चा संकेतक करुणा है। अगर भाईचारा करुणा में फल नहीं देता है, तो यह सच्चा और ईमानदार भाईचारा नहीं हो सकता। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।